Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jai Srila Prabhupada. श्लोक 34। कोटि प्रयासो अशुभ बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सत स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम् सामान्यतः किं विषयोपपादनै कोटि प्रयासो असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम् सामान्यतः किं विषयोपपादनहि कोटि प्रयासो असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम् सामान्यतः किं विषयोपपादनहि तो सवेरे के सिटिंग में प्रहलाद महाराज ने कहा था कि ततो भजद्वम हृदय हृदयेश्वरम् तुम लोग हृदय में हृदय नाथ श्री भगवान का भजन करो। तो असुर बालक पूछ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है जो भगवत प्रेम है। तो इतना बड़ा लाभ मिलता है जिस भक्ति से, तो भक्ति अवश्य बहुत कठिन वस्तु होगी, भक्ति करने में जरूर बहुत कठिनाई होगी। तो प्रहलाद महाराज समझाते हैं क्या प्रयास है। अति प्रयास, अति परिश्रम। कोटि प्रयास हो असुर बालक आहार। हे असुर बालकों, भगवान की उपासना में हरे उपासने को अति प्रयास, कौन सा कठिन परिश्रम है, अर्थात कुछ भी परिश्रम नहीं है। क्या परिश्रम है पूछ रहे हैं, तो अपने आप समझते में कुछ परिश्रम नहीं। क्या परिश्रम है? हरि श्री कृष्ण जो अपने आश्रित के भक्तों के दुख को हर लेते हैं, एक तो उपास्य की विशेषता है। भगवान हरि भक्ति करने वालों के दुख का हरण कर लेते हैं, इसलिए वे हरि हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ है, द्वि मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे। जो संपर्क करने वाले के सभी अमंगल का को हर लेते हैं, नाश कर देते हैं, और प्रेम दे करके अपना सौंदर्य दिखा करके सभी जीवों के मन को हर लेते हैं, अपने बांसुरी से, रासलीला से, और विविध गोवर्धन धारण आदि लीलाओं से जो सभी प्राणियों को मोह लेते हैं वे हरि हैं। तो ऐसे हरि की उपासना में, हरे उपासने भगवान की भक्ति में कह अति प्रयास, कौन अधिक मेहनत है। कोई कह सकता है कि यदि हरि दूर हैं तो उनको बुलाने में परिश्रम होगा, लेकिन यह परिश्रम भी नहीं है। हरि को खोजना नहीं है, वे सबसे निकट जीव के हैं, हृदय हृदय में हैं, और छिद्रवत हैं तो बहुत महान, सबसे बड़े हैं, जैसे आकाश सबसे बड़ा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आकाश सबसे अधिक निकट है। जहां जाएंगे वहां आकाश है, किसी के लिए आकाश सुलभ है। भगवान परम महान है लेकिन सबके लिए सुलभ है, तो उनके अन्वेषण में कोई परिश्रम नहीं, उनको खोजना ही नहीं, हृदय में है, सबसे निकट है। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं असुर बालकों को, उत्साहित कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति में कि विचार करो, हरि सबके हृदय में है, अभी हमारे हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, सब जगह है, और सर्वज्ञ है, सबकी भावनाओं को समझते हैं, सबके संकल्प विकल्प को समझते हैं, हृदय छिद्रवत सतह अपने हृदय में आकाश की तरह विद्यमान है, हृदय में भी आकाश है, तो आकाश की तरह भगवान सबको सुलभ है। हृदय पुंडरीक कहा जाता है, हृदय कमल पर श्री भगवान विराजते हैं। तो एक तो भगवान दूर नहीं है, अगर कोई दूर है तो उसको खुश करने में जाना पड़ेगा या बुलाना पड़ेगा, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी, और आ भी जाए तो दूसरा परिश्रम है कि उससे मिलने के लिए अपॉइंट लेना पड़ता है, उसे मिलेंगे वो अवसर देगा कि नहीं देगा, लेकिन श्री भगवान तो हृदय में ही हैं और सदा हैं, ये उनकी विशेषता है, सतह वे सदा विद्यमान हैं। इस तरह अपने उपास्य को, भगवान कृष्ण को खोजना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, वे हैं और अपने ही नियम से हैं, किसी की प्रार्थना से या पुकारने से नहीं, अपने आप हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय सन्निविष्ट, हृदय में हूं। तो जो इतना निकट है उसकी उपासना में क्या दिक्कत है, उसकी भक्ति में क्या दिक्कत है। स्वस्यात्मन सख्य, भगवान कृष्ण स्वस्य अपने आत्मन, अपनी आत्मा है, वे जीव की आत्मा है, सभी अपने से प्रेम करते हैं, ये स्वभाव है जीव का, सभी अपने से प्रेम करते हैं, अपने को प्रसन्न करने में क्या परिश्रम है। और आत्मन सख्य अशेष देहिनाम सख्य, और हृदय में रह रहे हैं और हितैषी हैं, हितकारी हैं, हित करने के लिए ही जीव के साथ लगे हुए हैं, सभी जीवों के हितकारी हैं, सखा है, सखा कहते हैं उसको जो हित करे बिना अपेक्षा के, बिना प्रतिदान के हित करे उसको सखा कहते हैं। सखा का यह अर्थ नहीं कि साथ साथ खाए, एक साथ होटल में खाए चाहे कहीं भी, तो वो सखा है। सखा का अर्थ है अकारण हित करने वाला। तो श्री कृष्ण सभी जीवों के हितकारी हैं, हित करने वाले हैं। तो ऐसे मित्र को प्रसन्न करने में क्या परिश्रम है। यदि कोई व्यक्ति इस जगत में अपने पिता को प्रसन्न करना चाहे तो पिता थोड़ी सी वस्तु से बिना परिश्रम के प्रसन्न हो सकता है। कोई बच्चा छोटा सा अपने पिता को कोई वस्तु दे तो पिता प्रेम से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यह मेरा पुत्र है और देना सीख लिया, दे रहा है तो ग्रहण करना चाहिए। यहां तक कि उस बच्चे में अगर वस्तु देने की शक्ति नहीं होती है, वस्तु को उठाता है उससे उठती नहीं है वस्तु। जैसे मान लीजिए पीढ़ा ले जा रहा है, पिता भोजन करने के लिए बैठे हैं और उनके लिए बच्चा पीढ़ा उठा कर ले जा रहा है, पीढ़ा उठ नहीं रहा है, गिरता है, लड़खड़ाता है, उठाने में मेहनत है, लेकिन पिता प्रसन्न हो जाता है उसकी सेवा वृत्ति से। वो स्वयं जाता है, बच्चे को भी उठाता है और उस पीढ़े को भी उठाकर लाता है, पीढ़ा उठाकर स्वयं लाता है और बच्चे को भी उठाकर लाता है। तो इस तरह ये काम है सखा का, हितकारी का। तो श्री कृष्ण स्वाभाविक हितैषी हैं, अनौपाधिक हित करते हैं। तो ऐसे प्रभु को प्रसन्न करने में, भक्ति करने में क्या परिश्रम है। अशेष देहिना, संपूर्ण समस्त प्राणियों के, देहधारियों के वे परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, गीता में उन्होंने कहा है सर्वभूतानां, इसी को प्रहलाद महाराज अशेष देहिनां कह रहे हैं। समस्त देहधारियों का मैं सखा हूं, भगवान सखा है। तो ऐसे जो हमारा हित करने पर पड़ा हुआ है और इसी के लिए अपना वैकुंठ धाम छोड़कर हमारे साथ लगा हुआ है सभी जीवों के, ऐसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में क्या परिश्रम है, कुछ भी नहीं। और जो प्रसन्न करने की विधि है वो भी बिल्कुल सरल है। जो जीवन का स्वाभाविक काम है वही करना है, फालतू या परिश्रम का काम नहीं है। जैसे हम सुनते रहते हैं वो बस सुनना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुनना है। और सुनने के लिए जो सामग्री है वो भी भगवान ने दिया है, कान दिया है, बोलने के लिए जीभ दिया है, शरीर दिया है। तो इससे हम प्रणाम कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का नाम गान कर सकते हैं। तो ये सामग्री भी जुटानी नहीं है, सब कुछ इस देह में भगवान ने फिट कर दिया है अपने आप। तो बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। और कहीं विशेष कंदरा में या पर्वत में या नदी के किनारे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हृदय में ही है। प्रायः भक्ति करने वाले, भजन करने वाले ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान में चले जाते हैं, जैसे हिमालय में एकांत निर्जन स्थान में। तो भक्ति करने के लिए यह भी कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी बैठ करके अपने घर पर भी और रोड पर या पार्क में कहीं भी बैठ करके भगवान की उपासना कर सकता है व्यक्ति। उपासना श्रवण आदि रूप उपासना, भगवान कृष्ण की उपासना यही है ना, श्रवणम कीर्तनम, जिसमें मुख्य है। तो ये उपासना तो कहीं भी कर सकते हैं और दो चार सहायकों की भी आवश्यकता नहीं है। यदि अपने पास माला है तो ठीक है, नहीं तो बिना माला के भी जप कर सकते हैं। इतनी सरल विधि है, और एक बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, विद्वान कर सकता है, मूर्ख कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, कोई किसी भी स्थिति में हो कर सकता है। भक्ति इतनी सरल है, श्रवण कीर्तन करना है तो कहीं भी कोई कर सकता है, यही उपासना है हरि की। और हरि ऐसे हैं जो सभी देहधारियों के सखा हैं, सब अमंगल हर लेते हैं, सब दुख हर लेते हैं, उनका यह स्वभाव है। तो ऐसे हरि की उपासना में, भक्ति में को अति प्रयास, कौन अधिक परिश्रम है, कुछ भी नहीं। इसलिए करो तुम लोग भक्ति। असुर बालकों को उपदेश करते हुए श्री प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं। इस श्लोक में वे असुर बालका ये संबोधन भी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी उसको कहते हैं, हे मित्रों, हे असुर बालकों, यदि किसी को कठिनाई होती है भक्ति करने में तो वह केवल असुर भाव के कारण। असुर भाव का त्याग कर दोगे तो भक्ति बहुत सरल है। असुर भाव भगवान ने वर्णन किया है गीता के 16वें अध्याय में, आसुरी संपदा का वर्णन किया। तो आसुरी भाव रहता है तब तक भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, लेकिन आसुर भाव छोड़ देने पर भगवान की भक्ति बहुत ही सरल चीज है और बहुत सरस चीज है। अशेष देही नाम प्रहलाद महाराज कहते हैं, अशेष देही नाम, 84 लाख योनियों में जितने भी देहधारी हैं, वो वृक्ष, लता, कीट पतंग, पक्षी, पशु, मनुष्य और देवता, दैत्य, पाताल लोक आदि में रहने वाले दानव, इस सबके वे परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, और क्यों हृदय में है, जीव की मदद करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। वे स्वयं चाहते हैं कि ये सभी जीव मुझको प्राप्त कर ले, तो अपने को प्राप्त करने का वे उपाय अपनी वाणी में भगवद गीता में बताए हैं। और इसके साथ ही समय समय पर वे प्रभु अवतार लेकर के बहुत से उपदेश करते हैं, जैसे भगवान कपिल देव के रूप में उन्होंने उपदेश किया माता को और बहुत से ऋषियों को। माता देवहूति को तो ज्ञान दिए ही, इसके साथ अनेक ऋषि महात्माओं को ज्ञान दिए, भगवान ऋषभ देव के रूप में, भगवान दत्तात्रेय के रूप में। तो बारंबार ये कोशिश करते हैं, प्रयास में लगे हैं, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में रह रहे हैं, इसके साथ अवतार लेकर के भी आते हैं और बहुत सुंदर ज्ञान भगवत गीता में छोड़ करके गए हैं, और भगवान ने ये नहीं कहा ऑल राइट्स रिजर्व्ड, कोई इसको छाप नहीं सकता है, कोई पढ़ नहीं सकता है, बल्कि पढ़ने के उन्होंने कहा कि इसको जो पढ़ेगा वो ज्ञान जग के द्वारा मेरी आराधना करेगा, और जो इसका प्रचार करेगा मेरे भक्तों में मेरा सबसे प्रिय होगा। इस प्रकार की बात भगवान ने कहा है। तो कितनी सुविधा है, हम जिसका भजन करना चाहते हैं उसी का गाइडेंस है कि कैसे करेंगे, बहुत सुविधा है ना। आप यदि किसी के यहां जाना चाहते हैं, किसी के घर, तो उससे पूछते हैं कैसे आएंगे, कहां टर्न लेंगे, किस रोड को पकड़ेंगे, बाएं दाएं बता दीजिए, तो व्यक्ति बताता है यहां आना, ऐसे करना, यहां आने पर लेफ्ट मारना और राइट मारना है, बॉम्बे वालों की भाषा है मारना। तो भगवान स्वयं बताए हैं वैकुंठ में आने का, गोलोक में आने का रास्ता क्या है, क्या विधि है, भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट प्रवचन किया कैसे जाएंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, ये सब उपाय खोल करके भगवान ने बताया। तो भगवान हरि अपनी उपासना में हमारी मदद इस तरह से करते हैं। तो हे असुर बालकों, कोई परिश्रम नहीं है भगवान की भक्ति में, सब तरह से सुविधा है। कई अवसरों पर भगवान के उपदेश हुए हैं कई अवतारों में, तो उससे सहायता लेनी चाहिए। और विविध अवतार में विविध लीला प्रस्तुत किए हैं भगवान, उसे सुनते रहना चाहिए। तो कोई परिश्रम नहीं है, बोलने में और सुनने में क्या परिश्रम है, बोलना तो स्वभाव है ही, जब बोलना ही है तो इतना ही चेंज करना है कि विषय को बदल देना है, दूसरी बात न बोल करके हरे कृष्ण बोलेंगे या भगवान के विषय में कोई गीत गाएंगे। और सुनने का स्वभाव है बस श्रवण के विषय को बदलना है, भगवान की लीला सुननी है, भगवान का उपदेश सुनना है, भक्तों का चरित्र सुनना है, और खाना भी बंद नहीं करना है। खाना है लेकिन केवल विषय बदल देना है, भगवत प्रसाद खाना है और सब चीज गलत चीज नहीं खाना है। भगवान ये नहीं कहते कि नहीं निराहार रहो और मेरा भजन करो, उपवास करो, ऐसा नहीं कहते हैं। प्रसाद खाओ, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे प्रसाद खाओ, खूब गाओ और इसके बाद नाचो, खाओ गाओ और नाचो। ये जीवन की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उन्हीं क्रियाओं से हम भगवान को पा लेंगे, कोई एक्स्ट्रा तपस्या नहीं करनी, कोई परिश्रम नहीं है भक्ति में। क्या कोई परिश्रम है, वो प्रश्न भी कर रहे हैं। कोटि प्रयासो असुर बालका, हे असुर बालकों, भगवान हरि की उपासना में क्या अति प्रयास है, अति परिश्रम है, कुछ भी परिश्रम नहीं है। इसी से तो बच्चों ने भक्ति को अपना लिया। इसके पहले एक श्लोक की व्याख्या छूट गई थी, लेकिन वो तो इतना स्पष्ट है, हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वरः। भूते काम इति भूतानि मनसा कामस्तः साधुमान। भगवान हरि सभी जीवों में है, मन से यह विश्वास करके सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इति इति मतलब ऐसा विचार करके मनसा मन से कामय जो इच्छा है जीवों की उनको उस वस्तु को देते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। मानयत सभी जीव की एक चिरंतन इच्छा है, सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और एक इच्छा है संसार में कुछ खाने की कुछ पीने की सम्मान की। तो इसीलिए जीवों की इच्छा के अनुसार काम ही उनकी कामना पूरी करते हुए मुख्य रूप से उन्हें भक्ति देते हुए या वे जो चाहते हैं सबको आराम देते हुए भोजन देते हुए और यहां तक सम्मान देते हुए मन से सबका आदर करना चाहिए। यह संभव नहीं है कि या कोई शरीर से सबको संतुष्ट करे, लेकिन इस जगत में जितने प्राणी हैं जितने शरीरधारी हैं मन से वो सबका सम्मान कर सकता है व्यक्ति। या मन से करना है तो मन से तो ट्रक के ट्रक चावल मंगा करके गेहूं मंगा करके और सब्जी बांट सकता है, मन में पकाएगा मन में खिलाएगा सबको। ये शुभ भाव रखना चाहिए, सबको भोजन देना है सबको कपड़ा देना है सभी को दवाई देना है सभी को, केवल मनुष्य को ही नहीं। कितने कुत्ते होते हैं वे घुमा करते हैं रोड पर, तो कभी मारना नहीं चाहिए उनको। यदि सम्मान नहीं कर सके तो इतना तो करना चाहिए, भगवान उसके भीतर है, भगवान है, इसलिए मन से प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है चाहे गधा मिले चाहे कुत्ता मिले या चंडाल मिले उसको देह करके प्रणाम करना चाहिए। ये अपने भक्तों को सिखाए हैं, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं, दुख नहीं देना। तो प्रहलाद महाराज ये कहे थे, ये मैं छोड़ दिया था श्लोक, उसके परपर्ट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य समाज में एक भूल होती है ये सब श्लोक सुन करके कि भगवान सबके हृदय में हैं, सब में हैं, इसको पढ़ करके वे लोग ये समझते हैं कि सभी भगवान हैं। नहीं, तो सबके देह में भगवान है लेकिन सभी भगवान नहीं है, यह स्पष्ट प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। अशेष देहिनाम सख्यो, सभी देहधारियों के वे सखा हैं, लेकिन वे अलग हैं और जीव अलग है। जब भ्रम बस कभी कभी समझ लेते हैं कि सभी जीव भगवान हैं और विशेष करके भेद करने लगते हैं, ये दरिद्र नारायण हैं, नारायण कोई नहीं है, नारायण कभी दरिद्र नहीं होते हैं, वे धनी नारायण या गरीब नारायण नहीं है, वो हमेशा लक्ष्मीपति नारायण है। तो यह सब दरिद्र की सेवा करो, इस भाव से लोग कह देते हैं कि दरिद्र नारायण है, लेकिन नारायण कहना यह अपराध है। यहां तक कि ब्रह्मा जी को शिव जी को भी नारायण नहीं कह सकते, ये सबसे महान है, प्रभु है, हरि है। तो इसी के लिए मैं उस श्लोक को छोड़ दिया था, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है परम हितैषी के रूप में और नित्य रहते हैं, शयन अवस्था में भी, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सब समय में यहां भी साथ में है, कहीं भी जाएंगे वे साथ में ही रहते हैं। यहां तक कि देहांतरण होता है, शरीर बदल जाता है, लेकिन श्री भगवान उस जीव का संग नहीं छोड़ते हैं, इतना घनिष्ठ मित्र है, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। जब तक जीव इस प्राकृत जगत में रहता है तब तक भगवान साथ साथ लगे रहते हैं, चाहे वो जिस स्थिति में जाए, यदि मच्छर बनता है तो वहां भी भगवान जाते हैं, या ब्रह्मा बन गया तो वहां भी साथ रहते हैं, सर्वत्र सभी जीवों में रहते हैं। भगवान के इस प्रेमी स्वभाव को समझ करके उनका भजन करना चाहिए। जो इतना प्रेम करते हैं तो उनके उपासना में, भजन में क्या परिश्रम हो सकता है। तो श्री प्रह्लाद महाराज का यही कहना है कि भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो। ये बहुत सुंदर उपदेश है प्रह्लाद महाराज, और सामान्यतः किम विषयोपपाद नहीं, सामान्यतः का दो अर्थ है, श्री भगवान समस्त देहधारियों के समान रूप से हितैषी हैं, सब में हैं, और एक अर्थ है कि ये विषय भोग, विषय उत्पादन, इंद्रियों के जो भोग हैं, इनके उपार्जन में परिश्रम करने की क्या जरूरत है, ये सबके लिए समान है। एक सुअर जिस विषय को पाना चाहता है, यदि मनुष्य उसी को प्राप्त करने के लिए भारी परिश्रम करे तो ये महामूर्खता है। तो जो भोग मिलना है वो मिलेगा ही, सबको मिलता है, सुअर को भी, श्री ब्रह्मा जी को भी, मनुष्य को भी वो मिलेगा, उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं करने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि नरक भी जाना होगा तो उसके लिए भारी परिश्रम करना पड़ेगा, नरक जाने के लिए भी भारी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा बड़ा पाप करना पड़ेगा, और पाप करने के लिए पैसा चाहिए, सुविधा चाहिए, ज्यादातर धनी लोग ही महापाप करते हैं, ये शराब अधिकांश धनियों के कंठ में जाता है, और धनी लोग ही वेश्यागमन आदि करते हैं, वही कसाई खाना रन करते हैं। तो इस संसार के भोगों को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम है, ये विषय भोग सबको सुलभ है, बिना पैसे के भी सभी जीवों को, पशु पक्षी, ये क्या विषय उपार्जन करते हैं, क्या कमाते हैं, लेकिन उनको खाने को मिलता है, उनको भी इंद्रिय सुख मिल जाता है, और उसी विषय के लिए यदि मेहनत करे मनुष्य तो यह उसकी दुर्बुद्धिता है। तो यह मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, विषय भोग को जुटाने के लिए, उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए सब नहीं, संपूर्ण जीवन केवल इसी के लिए है कि हम इसका उपयोग भगवान को समझने में और उनसे प्रेम करने में करें। कभी कभी किसी किसी बच्चे से पूछा जाता है कितना जप करते हैं, तो कहता है एक माला दो माला। तो उसको ज्ञान नहीं है कि संपूर्ण जीवन भर केवल जप ही करने के लिए जीवन है, समय मिला है, ये पार्ट टाइम का सर्विस नहीं है, ये काम कर लिया एक घंटा हो गया छुट्टी हो गई, सारा जीवन यहां तक कि जन्मांतर भी अनेक जीवन तक यही करना है, इसी में आनंद है, सुख है, विषय भोग के लिए शरीर नहीं है, भोगों को जुटाने में बहुत परिश्रम है और भोगों का चिंतन करने में भी बहुत दुख है। भगवान गीता में कहते यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते, जो भी भोग हैं इस संसार में, ये घर द्वार कार बंगला या अपने स्वजन आदि, ये सब भोग दुख की योनियां हैं, कारण हैं। भोगों के चिंतन में भी बहुत कष्ट होता है और वे छूट जाएं तब भी कष्ट होता है और उनमें रहे व्यक्ति फिर भी कष्ट होता है। ये भोग सदा जलाते हैं जीव को, तो इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं किम विषयोपपादन है, विषय के उत्पादन में अर्जन में और संग्रह में क्या सुख है, कुछ भी नहीं। उनका संग्रह क्यों किया जाए, और संग्रह करने परिश्रम पड़ता है और परिश्रम मनुष्य करता है खूब, पर उसे सुख मिलता नहीं। वो भोग की वस्तुओं को जुटाता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जुटाने में उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कोई सुख नहीं मिलता है। तो बेटर है इसके लिए कर्मों का त्याग कर देना, भौतिक कर्म जो हमें बांधते हैं दुखी करते हैं। प्रहलाद महाराज बड़े विस्तार से इसको समझाए हैं, इसको हम आगे के सीटिंग में कुछ कहेंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये सब प्रसंग समझ में आते हैं तो कुछ कह लिया जाता है। वैसे हमारा कोई अधिकार नहीं है कि ऊंचे आसन पर बैठ करके आप लोगों को उपदेश करूं। अनेक भक्त अनेक जगह से आए हैं, इन भक्ति करते हैं, तो ये दुस्साहस है कि इनके बीच बैठ करके और उपदेश करना। परंतु श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद जी का या भगवान कृष्ण का पहले से ही सब उपदेश है, उसी को हिंदी भाषा में कहने का साहस करता हूं। वास्तव में यह अधिकार नहीं है, तो बोले हुए हैं तो उनके उपदेश को कुछ कहा जाता है, लेकिन करने में बोलने में बहुत अंतर है। बोल लेते हैं लेकिन करना नहीं है, जीवन में शून्य है भक्ति। कभी कभी लज्जा लगती है कि क्या भक्तों के बीच में भगवान के भक्ति की व्याख्या करनी है, पर श्रील प्रभुपाद का यही आदेश है कि कहना चाहिए, इसीलिए वक्ता बन करके बक लेते हैं। वक्ता का अर्थ हम शुरू में यही समझते थे, जो वक्ता है वक्ता रहता है, वो वक्ता है। तो इस तरह के वक्ता बन करके हम आप लोगों के सामने बक रहे हैं, परंतु प्रसंग बहुत गंभीर है, श्री प्रहलाद महाराज की याद आती है, तो उसी लोभ से कुछ कह दिया जाता है। आप इसको पढ़िएगा, मनन कीजिएगा, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।